श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, अथ षोडशोध्याय, सोलहवां बाब। जोग के मालिक बंदा नवाज श्री कृष्ण के सवाल खड़ा करने का अपना मखसूस अंदाज है। पहले वो मौजू की खूबियों का बयान करते हैं, जिससे इंसान उसकी तरफ मुतवज्जा हो। उसके बाद वो उस मौजू को साफ करते हैं। मिसाल के तौर पर अमल को लें। उन्होंने दूसरे बाब में ही तरगीब दी के अर्जुन अमल कर। तीसरे बाब में उन्होंने इशारा किया कि मुअय्यना अमल कर। मुअय्यना अमल है क्या? तो बताया कि यज्ञ का तरीके कार ही अमल है। फिर उन्होंने यज्ञ की शक्ल ना बताकर पहले यह बताया कि यज्ञ आया कहां से और देता क्या है। चौथे बाब में 13-14 तरीकों से यज्ञ की शक्ल को साफ किया, जिसको अंजाम देना अमल है। यहां अमल की साफ तस्वीर जाहिर होती है, जिसका खालिस माना है फिक्र, जोग, इबादत, जो मन और हवास की तहरीक से पूरा होता है। इसी तरह उन्होंने बाब 9 में रूहानी और दुनियावी दौलत का नाम लिया। उनकी खूबियों पर जोर दिया कि अर्जुन, दुनियावी खसलत वाले मुझे कमतर कहकर पुकारते हैं। वैसे हूं तो मैं भी इंसानी जिस्म की बुनियाद वाला, क्योंकि इंसानी जिस्म में ही मुझे यह मर्तबा हासिल हुआ है। लेकिन दुनियावी खसलत वाले जाहिल लोग मुझे नहीं याद करते, जबकि रूहानी दौलत के हामिल अकीदतमंद लोग ला शरीक अकीदत के साथ मेरी इबादत करते हैं। लेकिन इन दौलतों की शक्ल, उनकी साख्त अभी तक नहीं बताई गई। अब बाब 16 में जोग के मालिक उनकी शक्ल साफ करने जा रहे हैं, जिनमें पेश है पहले रूहानी दौलत की पहचान। श्री भगवान वाचा,
अभयम् सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्।
खौफ का हर तरह से खातिमा, बातिन की तहारत, बसीरत के लिए तासुर में अटल हालत, यह मुसलसल लगन, सब कुछ की सुपुर्दगी, अच्छी तरह नफ्स कुशी, यज्ञ का बर्ताव, यानी जैसे खुद श्री कृष्ण ने बाब 4 में बताया है, एतदाल की आग में हवन, आतिशे हवास में हवन, जानु रियाह में हवन, और आखिर में आतिशे इल्म में हवन, यानी इबादत का तरीके कार जो महज मन और हवास के बातिनी अमल से पूरा होता है, तिल, जौ, वेदी वगैरह चीजों से होने वाले यज्ञ का इस गीता में बताए गए यज्ञ से कोई सरोकार नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी सोमो सलात यानी कर्मकांड को यज्ञ नहीं माना। तहकीक यानी अपनी शक्ल की तरफ माइल कराने वाला मुताला, रियाजत यानी मन के साथ हवास को माबूद के मुताबिक ढालना, और आर्जवम यानी जिस्म और हवास के साथ बातिन की रास्ती।
अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुप्त्वं मार्दवं रीरचापलं।
अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, यानी रूह की नजात, यानी रूह को तनज्जुल की तरफ ले जाना ही तशद्दुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं खबरदार होकर अमल का बर्ताव ना करूं तो इन तमाम रियाया को मारने वाला और दोगले का मुर्तकिब बनूं। रूह की खालिस नस्ल है, रूह मुतलक, उसका दुनिया में भटकना दोगला है। रूह की तशद्दुद है और रूह की नजात अदम तशद्दुद है। सदाकत यानी सदाकत का माना हकीकत और दिल पसंद तकरीर नहीं है। आप कहते हैं लिबास हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब जिस्म आपका नहीं है, फानी है, तो उसे ढकने वाला लिबास कब आपका है? दरअसल सदाकत की शक्ल जोग के मालिक ने खुद बताई है कि अर्जुन, तीनों दौर में सदाकत की कमी कभी नहीं रहती है। ये रूह ही हक है, यही मावरा सदाकत है। इस सदाकत पर नजर रखना, गुस्से का ना होना, सारा कुछ की सुपुर्दगी, मुबारक नामुबारक आमाल के नताइज का ईसार, तबीयत की शोकी का पूरी तरह खातिमा, मकसद के बरखिलाफ काबिले मजम्मत कामों को ना करना, सारे जानदारों के ऊपर रहम दिली, हवास का मौजूआत से इत्तेफाक होने के बाद भी उनमें लगाव का ना होना, नरमी, अपने मकसद से मुंह मोड़ लेने पर शर्मिंदगी, बेकार की कोशिशों से बाजियाबी और
तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत।
जलाल यानी जो वाहिद माबूद में है, जिससे भलाई वजूद में आती है, जो बुद्ध में था, यही वजह थी कि महात्मा बुद्ध की नजर पड़ते ही अंगुली माल जैसे खौफनाक डाकू के ख्यालात बदल गए। मुआफी, सब्र, तहारत, किसी के साथ दुश्मनी के एहसास का ना होना, अपने मन में खुद को इबादत के काबिल समझने के ख्याल का बिल्कुल ना होना, ये सब तो ऐ अर्जुन रूहानी दौलत को हासिल करने वाले इंसान की निशानियां हैं। इस तरह तमाम सब 26 निशानात बताए, जो सब के सब तो रियाजत में कामिल हालत वाले इंसान में मुमकिन है और जुजई तौर से आप में भी जरूर मौजूद हैं। और दुनियावी दौलत से मुलविस इंसानों में भी ये खसूसियात हैं, लेकिन ख्वाबीदा हालत में रहती हैं, तभी तो बेहद गुनाहगार को भी नजात का हक है। अब दुनियावी दौलत की खास खास निशानियां बयान करते हैं।
दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी।
ऐ अर्जुन, रियाकारी, तकब्बुर, गुरूर, गुस्सा, सख्त जबानी और जहालत, ये सब दुनियावी दौलत को हासिल करने वाले इंसान की निशानियां हैं। दोनों दौलतों का काम क्या है?
दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता माशुच संपदं दैवी अभिजातोसि पांडव।
इन दोनों तरह की दौलतों में से रूहानी दौलत तो यानी विमोक्षाय खुसूसी नजात के लिए है और दुनियावी दौलत बंदिश के लिए मानी गई है। ऐ अर्जुन, तू गम मत कर, क्योंकि रूहानी दौलत को तूने हासिल किया है, खुसूसी नजात को हासिल करेगा, यानी मुझे हासिल करेगा। ये दौलतें रहती कहां हैं?
द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमे शृणु।
ऐ अर्जुन, इस जहान में जानदारों के खसाइल दो तरह के होते हैं, देवताओं की तरह और शैतानों की तरह। जब दिल में रूहानी दौलत अमल की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो इंसान ही देवता है, और जब दुनियावी दौलत की इफरात हो तो इंसान ही शैतान है। दुनिया में ये दो ही जातें हैं, वो चाहे अरब में पैदा हुआ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते कि इन दो में से अभी तक देवताओं के मिजाज के बारे में तफसील से बयान किया गया। अब शैतानों की फितरत को मुझसे तफसील के साथ सुन।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
अय अर्जुन, शैतानी खसलत वाले लोग यानी कार्यम कर्म, फर्ज में लगने और ना फरीजा कामों से अलग होना भी नहीं जानते, लिहाजा अना होती है, न बर्ताव और न सदाकत ही रहती है। उन इंसानों के ख्यालात किस तरह के होते हैं, लिहाजा उनमें न तहारत होती है, न बर्ताव और न सदाकत ही रहती है। उन इंसानों के ख्यालात किस तरह के होते हैं?
असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम।
वो शैतानी खसलत वाले इंसान कहते हैं कि ये दुनिया पनाह से खाली है, बिल्कुल झूठी है, और बिला माबूद के खुद ब खुद तवालुद व तनासुल से पैदा हुई है, लिहाजा सिर्फ आयश व इशरत का लुत्फ उठाने के लिए है, इसके सिवा और क्या है।
एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता।
इस गलत नजरिए की बिना पर जिसका एतबार खत्म हो चुका है, वो कम अक्ल संगदिल इंसान सिर्फ दुनिया को तबाह करने के लिए ही पैदा होते हैं।
काममाश्रित दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद् गृहीत्वात् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः।
वो इंसान गुरूर इज्जत और घमंड के हामिल बनकर किसी भी तरह पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात का सहारा लेकर जहालत से गलत उसूलों को कबूल करके नामुबारक और बदउनवान इरादों से मुजयन होकर दुनिया में बर्ताव करते हैं। वो अज्म तो करते हैं लेकिन बदउनवान हैं।
अनुभवं चिन्ताम परिमीयांच प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः।
वो आखिरी सांस तक लामहदूद फिक्र तरद्दुद से घिरे रहते हैं और दुनियावी मौजूआत का लुत्फ उठाने में लगे हुए हैं। वो सिर्फ इतनी ही निशात है ऐसा मानते हैं। उनकी इतनी ही तस्लीम शुद्धी होती है कि जितना हो सके ऐशो इशरत के सामान को इकट्ठा करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्।
उम्मीद के सैकड़ों फांसी के फंदों से, यानी एक फांसी के फंदे से लोग मर जाते हैं, यहां सैकड़ों फांसी के फंदों से बंधे हुए ख्वाहिश गुस्से के हामिल ऐश व इशरत को हासिल करने के लिए वो गैर वाजिब तरीके से दौलत वगैरह बहुत से सामानों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा दौलत के लिए वो दिन रात गैर समाजी कदम उठाया करते हैं। आगे फरमाते हैं,
इदमद्यमया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्।
वो सोचते हैं कि मैंने आज ये हासिल किया है, इस तमन्ना को पूरी करूंगा, मेरे पास इतनी दौलत है और फिर कभी इतनी हो जाएगी।
असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी।
वो दुश्मन मेरे जरिए मारा गया और दूसरे दुश्मनों को भी मैं मारूंगा, मैं ही परवरे आला और आबोताब का सारिफ हूं, मैं ही कामयाबियों से मुजयन बहादुर और बामसरत हूं।
आढ्यो भी जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहिताः।
मैं बहुत बड़ा दौलतमंद और बड़े खानदान वाला हूं, मेरे बराबर दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, मैं सदका दूंगा, मुझे खुशी होगी। इस तरह की जहालत से वो खालिस फरिश्तगी में रहते हैं। क्या यज्ञ और सदका भी जहालत है? इस पर श्लोक 17 में साफ जाहिर किया है। इतने पर भी वो रुकते नहीं, बल्कि तमाम गलत फहमियों के शिकार रहते हैं। इस पर फरमाते हैं,
अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च।
तमाम तरह से गुम गश्तगी की शिकार हुई तबीयत वाले फरिश्तगी के जाल में फंसे हुए, दुनियावी ऐशो इशरत में बेहद डूबे हुए वो शैतानी खसलत वाले इंसान नापाक दोजख में गिरते हैं। आगे श्री कृष्ण खुद बताएंगे कि दोजख क्या है।
आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्।
खुद ब खुद को ही अफजल मानने वाले, दौलत और इज्जत के नशे में चूर होकर वो तकब्बुर पसंद इंसान, शरीयत के तरीकों से खाली, सिर्फ नाम भर को यज्ञों के जरिए ढोंग के साथ यज्ञ करते हैं। क्या वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया है? नहीं, उस तरीके को छोड़कर करते हैं, क्योंकि तरीका जोग के मालिक ने खुद बताया है, यानी बाप चार के 24 से 33वें और बाप 6 के 10 से 17वें श्लोक में।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः।
वो दूसरों की मजम्मत करने वाले, तकब्बुर, ताकत, गुरूर, ख्वाहिश और गुस्से के हामिल इंसान अपने और दूसरे के जिस्म में मौजूद मुझ आलिमुल गैब कादिरे मुतलक से अदावत रखने वाले हैं। शरीयत के तरीके के मुताबिक रूह मुतलक की याद करना एक यज्ञ है। जो इस तरीके को तर्क कर महज नाम का यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, वो अपने और दूसरे के जिस्म में मौजूद मुझ रूह पाक से अदावत करने वाले हैं। लोग अदावत करते ही रहते हैं और बच भी जाते हैं, क्या ये भी बच जाएंगे? इस पर कहते हैं, नहीं।
तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु।
मुझसे अदावत करने वाले उन गुनाहगारों, संग दिल कमीनों को मैं दुनिया में मुसलसल तौर पर शैतानी योनियों में ही गिराता हूं, जो शरीयत के तरीकों को तर्क कर यज्ञ करते हैं। वो गुनाहों की योनियों वाले हैं, वही इंसानों में बदजात हैं, उन्हीं को बद किरदार कहा गया, दूसरा कोई बदजात नहीं है। पीछे कहा था, ऐसे बद जातों को मैं जहन्नम रसीद करता हूं। उसी को यहां कहते हैं कि उन्हें हमेशा रहने वाली शैतानी योनियों में ढकेलता हूं, यही जहन्नम है। आम कैद खाने की तकलीफ खौफनाक होती है, और यहां मुसलसल शैतानी योनियों में गिरने का सिलसिला कितना तकलीफ देह है। लिहाजा रूहानी दौलत के लिए कोशां रहना चाहिए।
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्।
कौन्तेय, जाहिल इंसान तमाम जन्मों तक शैतानी योनि को हासिल करने वाले मुझे ना हासिल कर पहले से भी ज्यादा बद अंजाम को हासिल करते हैं, जिसका नाम जहन्नम है। अब देखें जहन्नम का मखरज क्या है।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजे।
ख्वाहिश, गुस्सा और लालच, ये तीन तरह के जहन्नम के असल दरवाजे हैं। ये रूह को तबाह करने वाले, उसे तनज्जुल में ले जाने वाले हैं, लिहाजा इन तीनों को तर्क कर देना चाहिए। इन्हीं तीनों की बुनियाद पर दुनियावी दौलत टिकी हुई है, इन्हें तर्क करने से फायदा।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्।
कौन्तेय, जहन्नम के इन तीनों दरवाजों से आजाद हुआ इंसान अपने फलाह आला के लिए अमल कर पाता है, जिससे वो आला नजात यानी मुझे हासिल करता है। इन तीनों उयूब को तर्क करने पर ही इंसान मुअय्यना अमल करता है, जिसका नतीजा आला शरफ है।
यश्चास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्।
जो इंसान मजकूरा बाला शरीयत के तरीके को तर्क कर, यानी वो शरीयत कोई दूसरी नहीं, यानी इति गुह्यतमम शास्त्रम, बेहद बसे गए राज शरीयत, यानी बाब 15 के 20वें श्लोक में गीता खुद में मुकम्मल शरीयत है। ईद मुक्तम मया नघ, ये मेरे जरिए पाक कही गई, जिसे खुद श्री कृष्ण ने बताया, उस तरीके को तर्क कर अपनी मर्जी से बर्ताव करता है, उसे ना कामयाबी मिलती है ना आला नजात और ना सुकून ही हासिल करता है।
तस्माच्छास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि।
लिहाजा अर्जुन, तेरा क्या फर्ज है और क्या फर्ज नहीं है कि इंतजाम में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसके इंतजाम में शरीयत ही एक मिशल राह है, ऐसा समझकर शरीयत के तरीके से मुअय्यन हुए अमल को ही तेरे जरिए किया जाना लाजमी है। बाप 3 में भी जोग के मालिक श्री कृष्ण ने नियतम कुरु कर्मत्वम, यानी तू मुअय्यना अमल कर, मुअय्यना अमल पर जोर दिया और बताया कि यज्ञ का तरीकेकार ही वो मुअय्यना अमल है और वो इबादत के तरीके खास की अक्कासी है, जो मन को पूरी तरह से काबू में करके दायमी माबूद में दाखिला दिलाता है। यहां उन्होंने बताया कि ख्वाहिश, गुस्सा और लालच जहन्नम के तीन खास दरवाजे हैं। इन तीनों को तर्क कर देने पर ही उस अमल की यानी मुअय्यना अमल की शुरुआत होती है, जिसे मैंने बारहा कहा, जो आला शरफ और फलाह आला दिलाने वाला बर्ताव है। बाहर दुनियावी कामों में जो जितना मशगूल है, उतना ही ज्यादा ख्वाहिश, गुस्सा और लालच उसके पास सजा सजाया मिलता है। अमल कोई ऐसी चीज है कि ख्वाहिश, गुस्सा और लालच को तर्क कर देने पर ही उसमें दाखिला मिलता है, अमल बर्ताव में ढल जाता है। जो उस तरीके को तर्क कर अपनी मर्जी से बर्ताव करता है, उसके लिए सुकून का हुसूल या आला नजात कुछ भी नहीं है। अब फर्ज और नाफर्ज के इंतजाम में शरीयत ही वाहिद सनद है, लिहाजा शरीयत के तरीके के ही मुताबिक तेरा अमल करना मुनासिब है, और वो शरीयत है गीता। مغز سخن نشکرش. اس باب کی ابتدا میں جوگ کے مالک شری کرشن نے روحانی دولت کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس میں تصور کی حالت، سب کچھ کی سپردگی، باطنی طہارت، نفس کشی، من پر قابو، شکل کی یاد دلانے والا مطالعہ، یگ کے لیے کوشش، من کے ساتھ حواس کو تپانا، غصہ نہ کرنا، طبیعت کا سکون کے ساتھ کام کرنا وغیرہ 26 پہچانے بتائیں، جو سب کی سب تو معبود کے قریب پہنچے ہوئے جوگ کی ریاضت میں لگے کسی ریاضت کش میں ہی ممکن ہے، جزوی طور سے سب کے اندر ہے. اس کے بعد انہوں نے دنیاوی دولت میں خاص طور پر 4-6 عیوب کا نام لیا، جیسے تکبر، غرور، سختی، جہالت وغیرہ. آخر میں فیصلہ دیا کہ ارجن، روحانی دولت تو وموکشایا یعنی مکمل نجات کے لیے ہے، اعلی مرتبے کے حصول کے لیے ہے، اور دنیاوی دولت بندش اور تنزلی کے لیے ہے. ارجن، تو غم نہ کر، چونکہ تجھے روحانی دولت حاصل ہے. یہ دولتیں ہوتی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں انسانوں کے خصائل دو طرح کے ہوتے ہیں، دیوتاؤں کی طرح اور شیطانوں کی طرح. جب روحانی دولت کی زیادتی ہوتی ہے تو انسان دیوتاؤں جیسا ہوتا ہے، اور جب دنیاوی دولت کی زیادتی ہوتی ہے تو شیطانوں جیسا ہے. دنیا میں انسانوں کی بس دو ہی ذاتیں ہیں، چاہے وہ کہیں پیدا ہوا ہو، کچھ بھی کہلاتا ہو. اس کے بعد انہوں نے شیطانی خصلت والے انسانوں کی نشانیوں کا تفصیل سے بیان کیا. دنیاوی دولت کا حامل انسان فرض عمل میں لگنا نہیں جانتا، اور جو فرض نہیں ہے ان غیر فریضہ عمل سے الگ ہونا نہیں جانتا. وہ عمل میں جب لگا ہی نہیں تو اس میں نہ صداقت ہوتی ہے، نہ طہارت اور نہ برتاؤ ہی ہوتا ہے. اس کی سوچ میں یہ دنیا پناہ سے خالی، بلا معبود کے اپنے آپ توالد و تناسل سے پیدا ہوئی ہے، لہذا صرف عیش و عشرت کے لیے ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ یہ سوچ شری کرشن کے دور میں بھی تھی، ہمیشہ رہی ہے. صرف چاوارک یعنی ایک لامذہب فلسفی نے کہا ہو کہ ایسی بات نہیں ہے. جب تک لوگوں کے دل و دماغ میں روحانی اور دنیاوی دولت کا اتار چڑھاؤ ہے تب تک یہ سوچ رہے گی. شری کرشن کہتے ہیں وہ کم عقل سنگدل انسان سب کے افادے کا نقصان کرنے کے لیے ہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ذریعے یہ دشمن مارا گیا، اسے ماروں گا. اس طرح ارجن، خواہش اور غصے کے بس میں وہ انسان دشمنوں کو نہیں مارتے، بلکہ خود اور دوسروں کے اجسام میں موجود مجروح مطلق سے عداوت رکھنے والے ہوتے ہیں. تو کیا ارجن نے عہد کر کے جیدرت وغیرہ کو مارا؟ اگر مارتا ہے تو دنیاوی دولت والا ہے، اس پرور اعلی سے عداوت رکھنے والا ہے. جبکہ ارجن کو شری کرشن نے صاف کہا کہ تجھے روحانی دولت حاصل ہے، غم مت کر. یہاں بھی صاف ہوا کہ معبود کا مقام سب کے دل کی دنیا میں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی تجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، لہذا ہمیشہ شریعت میں بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے، ورنہ سزا تیار ہے. جوگ کے مالک شری کرشن نے پھر کہا کہ شیطانی خصلت والے سنگ دل انسانوں کو میں بار بار جہنم میں گراتا ہوں. جہنم کی شکل کیا ہے؟ تو بتایا بار بار نیچ بد ذات یونیوں میں گرنا ایک دوسرے کا مترادف ہے، یہی جہنم کی شکل ہے. خواہش، غصہ اور لالچ جہنم کے تین اصل دروازے ہیں. इन तीनों पर ही दुनियावी दौलत टिकी हुई है। इन तीनों को तर्क कर देने पर ही उस अमल की शुरुआत होती है जिसे मैंने बार बार बताया है। साबित है कि अमल कोई ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत ख्वाहिश, गुस्सा और लालच को तर्क कर देने पर ही होती है। दुनियावी कामों में आबरू के साथ सामाजिक इंतजामात का फर्ज अदा करने में जो जितने मसरूफ हैं, ख्वाहिश, गुस्सा, लालच, उनके पास उतने ही ज्यादा सजे सजाए मिलते हैं। तर हकीकत इन तीनों को तर्क कर देने पर ही आला माबूद से निस्बत दिलाने वाले मुकर्ररा आमाल से मुनासिबत होती है। लिहाजा मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या फर्ज है, क्या फर्ज नहीं है कि इंतजाम में शरीयत ही सनद है। कौन सी शरीयत? यही गीता शरीयत, यानी कि मन नहीं यहा शास्त्र विस्तर यहा। गीता से बड़ा दूसरा शास्त्र कौन सा है? लिहाजा इस शरीयत के जरिए मुआयन किए हुए खास अमल यानी हकीकी अमल को ही तू कर। इस बाब में जोग के मालिक श्री कृष्ण ने रूहानी और दुनियावी दोनों दौलतों का तफसील से बयान किया, उनका मकाम इंसानी दिल को बताया, उनका समरा बताया। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता की तमसील उपनिषद व इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुतालिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में सिफात यजदां व अहरमन योग यानी दैवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गड़ानंद के जरिए लिखी श्रीमद् भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में सिफात यजदां व अहरमन योग यानी दैवासुर संपद विभाग योग नाम का 16वां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत।